जयं कुंज बिहारी राधा। कुंज बिहारी जय राधा माधव जयं कुंज बिहारी राधा। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय हो। जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्री मधिर डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिवराम दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौनिताई की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय, चार अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या 26, पृष्ठ संख्या 169। सबने निकाल लिया, मेरे पीछे बोलिए। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वती शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वती श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वती शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वती। तो आप लोगों में से दो पुरुष बोलेंगे, दो बार देवियां बोलेंगी, ठीक है, बोलिए। देवी बस शब्दार्थ बोलिए। श्रोत्र आदिनी, श्रोत्र आदि इंद्रियाणि, इंद्रियां अन्य अन्य संयम संयम की अग्निशो अग्नि में जुहवती अर्पित करते हैं। शब्द आदीन शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रिया इंद्रियों की अग्निशो अग्नि में जो है वती यजन करते हैं। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं
तो
दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को हम समझेंगे। इस श्लोक के शब्द क्या हैं?
और जिनके बच्चे बाहर हों उन माताओं से प्रार्थना है कि वो बच्चों को साइलेंट कर दें।
जिनके पास मोबाइल है उनको साइलेंट मोड में करें, जिनके पास बच्चे हैं उनको साइलेंट मोड में करें। मोबाइल और बच्चे सब साइलेंट मोड में करिए। तो श्लोक के शब्दों को समझेंगे। श्लोक के शब्द क्या हैं? श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि, श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि, है ना। इंद्रिया मतलब कौन सी इंद्रिया? श्रोत्र आदि, श्रोत्र माने कान, कान आदि इंद्रियों को। तो कान से प्रारंभ करके जो इंद्रियां हैं, है ना, तो ये इंद्रियां कौन सी हैं? कान से जो प्रारंभ होती हैं ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो जब भगवान कहते हैं श्रोत्र आदीन इंद्रियाणी, तो इसका मतलब है पांच ज्ञान इंद्रियां जो कान से प्रारंभ होती हैं, है ना। और क्रम क्या है इंद्रियों का? विषयों का क्रम, इंद्रिय के विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द कानों से सुनते हैं, फिर दूसरा विषय है स्पर्श, त्वचा से स्पर्श करते हैं। दूसरी इंद्रिय त्वचा है, शब्द स्पर्श रूप, तो तीसरी इंद्रिय रूप जो ग्रहण करती है क्या है? आंख, है ना। तीसरी इंद्रिय रूप रस, तो चौथा विषय है रस, है तो जिह्वा के द्वारा, तो चौथी इंद्रिय जिह्वा है। और गंध पांचवी, पांचवा विषय है नासिका। तो पांच इंद्रियों का जो क्रम है हमें उस प्रकार से समझना है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द यानी कान, फिर त्वचा, शब्द स्पर्श रूप कान त्वचा नेत्र, शब्द स्पर्श रूप रस, फिर जिह्वा और नासिका। कान पहला कान और दूसरा त्वचा, तीसरा नेत्र, कान त्वचा नेत्र, फिर जिह्वा नासिका, कान त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका, कान त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका, ये पांच इंद्रियां। तो श्रोत्र आदीन इंद्रियाणि अन्य, अन्य का मतलब है अन्य लोग। तो भगवान कई प्रकार के आगे बतला रहे हैं, तो उनमें से कोई व्यक्ति ये करता है तो दूसरा व्यक्ति ये नहीं करता तो ये करता है, ऐसे अन्य भगवान जो है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अन्य। तो भगवान ने जितने भी प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं तो सभी यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, इनमें से कोई भी एक। तो कोई व्यक्ति ये करता है तो कोई व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है वो ये नहीं करता ये करता है, इस तरह से भगवान मतलब अलग अलग यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान ने दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। पहले प्रकार का यज्ञ क्या है कि स्त्रोत्र आदि इंद्रियाणी, है ना, तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको जो है हवन करते हैं, उन इंद्रियों का हवन करते हैं, किसमें? संयम अग्निशु जुहवती, संयम की अग्नि में हवन करते हैं, उन इंद्रियों का हवन करते हैं, है ना। इसका मतलब त्याग करते हैं, विषयों का त्याग करते हैं, इंद्रिय विषयों का त्याग करना है, विषयों को भोगते नहीं हैं, है? तो पांच प्रकार की इंद्रियां हैं, उनके पांच अलग अलग विषय हैं, तो उनको ना भोगना एक प्रकार से क्या है? हवन करना है, है ना। तो इंद्रियों का हवन करना है, है ना। फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं शब्द आदीन विषयानी, अब शब्द से प्रारंभ होकर के विषय, तो जैसे कान से प्रारंभ होने वाली पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं उसी प्रकार से पांच विषय शब्द से प्रारंभ होने वाले हैं, है ना। तो कान से प्रारंभ होने वाली जो इंद्रिय है कान से प्रारंभ होने वाली इंद्रिय, हमने बताया था कान फिर त्वचा, फिर नेत्र, फिर जेवा नासिका, है ना। तो इसी प्रकार से शब्द से प्रारंभ होने वाले पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ठीक है ना, ये विषयों का भी क्रम उसी प्रकार से, जैसे इंद्रियों का क्रम है उसी प्रकार से विषयों का क्रम है ना। तो प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय होता है ना। तो शब्द आदिनि विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निसु जुहेवती, इंद्रियों की अग्नि में हवन करते हैं। इसका मतलब क्या है, उन विषयों को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन विषयों को हवन करते हैं, यानी वे विषय जो है उनकी चेतना को दूषित नहीं कर पाते हैं। विषयों को ग्रहण करते हैं लेकिन विषयों को भोगते नहीं है, उनको नष्ट कर देते हैं, वो सुख की अनुभूति नहीं करते। उन विषयों को ग्रहण करते हैं इंद्रियों के द्वारा, लेकिन उनको हवन कर देते हैं, इंद्रिय की इंद्रियां उनकी अग्नि बन जाती हैं कि वो विषय को जो है वो क्या करते हैं, जला डालते हैं, विषय को जला डालते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिल प्रभुपाद की। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं, है ना। चार आश्रम है, पहला आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम होता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है, तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा आश्रम संन्यास आश्रम, है ना। दो चार आश्रम है, तो चारों के चारों आश्रम किस लिए हैं, पूर्ण योगी बनने के निमित्त। आश्रम का अर्थ, आश्रम का अर्थ क्या है, ऐसा स्थान जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है ना। तो गृहस्थ आश्रम, है ना, वैवाहिक जीवन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो गृहस्थ जीवन होता है, दूसरा गृहमेधी जीवन होता है। तो गृहमेधी जीवन का उद्देश्य होता है इंद्रिय तृप्ति करना, लेकिन गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति करना, है ना। तो ये चारों के चारों आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए होते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। चारों आश्रम इस प्रकार से, आगे ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो ये ब्रह्मचारियों के लिए पहली पंक्ति, इस श्लोक की पहली पंक्ति किनके लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए, जो ब्रह्मचारी हैं शिष्य के घर में ही रहते हैं, उसे कहते हैं गुरुकुल, है ना। प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं, वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, है ना। तो ये है, हवन करना, मतलब जो कृष्ण भावना भावित शब्द हैं वही सुनेंगे, जो दूसरे शब्द हैं वो नहीं सुनेंगे। ब्रह्मचारियों के लिए ये कठोर नियम होते हैं ना। आगे श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, पांच ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहले जो ज्ञानेंद्रिय है वो श्रवण है। तो प्रभुपाद कहते हैं ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरेर नामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। कीर्तन भी अगर आप करते हैं तो उसको सुनना ही होता है, आप जो है जब करते हैं हरे कृष्ण, अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो वो फिर बेकार है, क्योंकि आपके कान में नहीं जा रहा है ना। तो अगर कान में नहीं जा रहा है तो फिर उसका लाभ नहीं है, इसलिए कीर्तन भी जो है आप जो कर रहे हैं वो वास्तव में श्रवण होना चाहिए उसका भी, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो आपको सुनना है, या आप खुद बोलते हैं तो भी आपको सुनना है। अगर आप स्वयं नहीं सुन रहे जो कुछ भी आप बोल रहे हैं तो उसका फिर कुछ लाभ नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं आगे, वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, तो यही हवन है, ये है एक प्रकार का यज्ञ, है ना। आगे और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में इंद्रिय तृप्ति मतलब स्वादिष्ट भोजन करना है और, है ना, तो ये सब जो भोग हैं तो इन भोगों को भी वो इस प्रकार से भोगे कि भोगों का जो प्रभाव है उसकी चेतना में ना पड़े, चेतना दूषित ना हो, तो भोगों को जलाना हो गया, वो विषयों को वो इंद्रिय रूपी अग्नि में जला डालता है, ठीक है ना। जो सामान्य व्यक्ति है विषयों को भोगता है तो क्या होता है कि विषयों का प्रभाव उसकी चेतना में पड़ता है ना, उसकी चेतना में पड़ता है, है? लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए बताया गया इतनी सावधानी से विषयों को वो भोगे कि विषय उसकी चेतना में प्रभाव ना डालें, वो विषयों को इस प्रकार से नष्ट कर दे, जला डाले। हवन किसको कहते हैं, हवन। आगे यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य में प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है, इसे धर्म विवाह कहते हैं। धर्म विवाह का मतलब क्या है कि इंद्रिय तृप्ति इतनी सावधानी से करना है, इतनी सीमा के अंदर करना है कि वो इंद्रिय तृप्ति का जो प्रभाव है अपनी चेतना में ना पड़े, कि चेतना दूषित ना हो, चेतना की सुरक्षा हो, आपकी चेतना सुरक्षित रहे, है ना। आगे ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक पर जो मैंने लिखा है, अभी पुस्तक नहीं छपी है इसकी, लेकिन यह अध्याय मतलब मैंने पूरा किया हुआ है, श्री भगवान ने कहा तो उसी में से मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो इसमें काफी गहराई है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि स्रोत्र आदि इंद्रियाणि, स्रोत्र का अर्थ है कान, स्रोत्र आदि इंद्रियाणि कान से प्रारंभ करके हमारे शरीर में जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं श्रीमद् भागवत के 3:26-32 के तात्पर्य में, कान पहली ज्ञानेंद्रिय है। यदि कोई किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, तो उसे कानों से ही ग्रहण किया जा सकता है। अतः स्त्रोत्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, वैदिक ज्ञान भी श्रुति, क्योंकि ज्ञान सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है, सुनकर ही हम भौतिक या आध्यात्मिक आनंद तक पहुंच सकते हैं, चाहे भौतिक आनंद हो चाहे आध्यात्मिक आनंद, सुनकर के ही। भौतिक जगत में हम अपने आराम के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण सुनकर ही करते हैं, सुनते हैं ना, सुनकर के ही करते हैं, जो पहले से ही विद्यमान रहती हैं। किंतु सुनने मात्र से है उन्हें रूपांतरित किया जा सकता है। यदि हम गगनचुंबी भवन बनाना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमें इसका सृजन करना होगा, बनाना कुछ नहीं है। गगनचुंबी भवन की सारी सामग्री लकड़ी धातु मिट्टी आदि पहले से है, किंतु हम पहले से उत्पन्न इन पदार्थों के साथ घनिष्ठ संपर्क ये सुनकर स्थापित करते हैं कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। इसी प्रकार असली स्रोत से श्रवण करके आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र बनाया जा सकता है। अर्जुन देहात्म बुद्धि वाले निपट भौतिकतावादी थे और देहात्म बुद्धि से बुरी तरह पीड़ित थे, किंतु श्रवण मात्र से वे कृष्ण भक्त बन गए, श्रवण मात्र से, है ना। सुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें उचित स्रोत से श्रवण करना चाहिए। कान के बाद दूसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है, हमने बताया त्वचा, जिसके द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान होता है कि कौन सी वस्तु कोमल है कौन सी वस्तु कठोर है, त्वचा से। कौन सी वस्तु शीतल है कौन सी वस्तु गर्म है, त्वचा से पता चलता है। इसके पश्चात तीसरी ज्ञानेंद्रिय नेत्र है, जिसके द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है, किस वस्तु का कैसा आकार है कैसा रंग है। इसके पास चौथी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है, जिसके द्वारा हमें स्वाद का ज्ञान होता है कि कौन सा भोजन तीता है मीठा है तीखा है कड़वा है खट्टा है। फिर पांचवी ज्ञानेंद्रिय नासिका है, जिससे गंध का ज्ञान होता है, किस वस्तु में सुगंध है, किस वस्तु में दुर्गंध है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान हमारे शरीर की पांच ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं, हैं? फिर अन्य शब्द का प्रयोग करके भगवान क्या कहते हैं कि अन्य, कि वो पहले का यज्ञ ना करके तो ये करेंगे, ये ना करें तो ये करें, कोई ये करें, तो कुछ लोग हैं इस प्रकार के यज्ञ को करते हैं। फिर संयम अग्निशु, हाँ संयम अग्निशु जुहेवती, अग्निशु बहुवचन है ना, इसका मतलब है कि एक एक ज्ञानेन्द्रिय को उसकी संयम अग्नि में हवन करना है ना। तो संयम शब्द का अर्थ है ऐसी क्रिया जिसमें इंद्रियों को वश में किया जाता है, और अग्निशु शब्द का अर्थ है अग्नि में, इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में। तो इंद्रिय संयम ही यज्ञ है, इंद्रिय संयम ही अग्नि है, ये एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें हवन सामग्री क्या है इंद्रियां, और अग्नि क्या है संयम, संयम की अग्नि है। तो अन्य भक्तगण कान आदि इंद्रियों का इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो इस यज्ञ में हवन सामग्री पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियां हैं, जिस अग्नि में सामग्री का हवन किया जाता है वह है इंद्रिय संयम रूपी अग्नि। इसका अर्थ है कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो तीव्र विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपनी इंद्रियों को उनके अपने अपने विषय भोगों से रोकते हैं ना। इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे अपने अपने विषयों को भोगना चाहती हैं, परंतु कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो एकांत में श्री कृष्ण का तीव्र भजन करने के लिए अपनी इंद्रियों को भोगों से रोकते हैं, ठीक है ना। इसी बात को भगवान यज्ञ का नाम देते हुए कह रहे हैं कि ऐसे भक्तगण अपनी इंद्रियों का अर्थात इंद्रियों की भोग प्रवृत्ति का इंद्रिय संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, इंद्रियों को भोगने की जो प्रवृत्ति है उसको ही हवन करना संयम रूपी अग्नि में, है ना। सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है कान, हमारे कानों में इच्छा रहती है कि सदा मधुर संगीत को सुना जाए, जिसमें भक्त ये समझता है कि मधुर संगीत एक ऐसा निमित्त है जिसके द्वारा माया देवी मुझे श्री कृष्ण की सेवा से दूर करना चाहती है। उस समय भक्त मधुर संगीत सुनने की इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है, ठीक है ना। उसकी इच्छा तो होती है सुनू बड़ा मधुर, जब देखता है कि अरे इसमें तो खतरा है मेरे लिए, तो वो जो है नहीं सुनता है। दूसरी इंद्रिय है त्वचा इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय में सर्दी के दिनों में गर्म जल और गर्म हवा का स्पर्श अच्छा लगता है, और गर्मी के दिनों में शीतल जल शीतल हवा का स्पर्श करने की इच्छा होती है। इसके अतिरिक्त स्त्री की त्वचा में पुरुष का और पुरुष की त्वचा में स्त्री का स्पर्श करने की इच्छा रहती है, परंतु जिस समय भक्त ये समझता है कि इस इच्छा को पूरी करने के परिणाम स्वरूप में श्री कृष्ण की सेवा से दूर हो जाऊंगा, उस समय भक्त अपने उस इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है। अब जाले के दिनों में गर्म पानी से स्नान करने की आवश्यकता अगर है कि हम देख रहे हैं कि शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक है, तो आप गर्म पानी में स्नान करिए, है ना। लेकिन अगर आप ठंडे पानी में स्नान करके अगर आप स्वस्थ रह सकते हैं, आपका शरीर नष्ट नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, है ना, यहाँ पर मुख्य बात यह है। फिर तीसरी इंद्रिय है नेत्र, हमारे नेत्रों में सुंदर रूप को देखने की अत्यंत लालसा रहती है, परंतु जिस समय भक्त इस बात को जान लेता है कि माया के ये सभी रूप मुझे लुभाकर श्री कृष्ण की सेवा से दूर करना चाहते हैं, उस समय वो अपनी इस इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है। चौथी इंद्रिय है जिह्वा, हमारी जिह्वा में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा रहती है, किंतु जिस समय भक्त ये देखता है कि ऐसा भोजन ना तो श्री कृष्ण को अर्पित किया गया और ना ही ये श्री कृष्ण को अर्पित करने लायक है, कोई चीज ऐसी कि कृष्ण को अर्पित लायक करने लायक है लेकिन अर्पित नहीं हुई तो नहीं खाएगा, और कोई चीज ऐसी होती है जो अर्पित करने लायक ही नहीं है तो अर्पित करने की तो बात ही कहां से आई, तो नहीं खाता, है ना। तो क्या हो गया, हवन हो गया। आपकी इच्छा तो है खाने की लेकिन आपने उस इच्छा का हवन कर दिया, है ना। उस समय भक्त अपने स्वाद लेने की इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है, अब पांचवी इंद्रिय है नासिका। हमारी नासिका में अनेक प्रकार की सुगंधियों को सूंघने की इच्छा रहती है, किंतु जिस समय भक्त देखता है ये सुगंधि श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की गई है, अगर प्रसादी माला है तो हम सूंघते हैं, है ना। अगर प्रसादी माला नहीं है, आप माला बना रहे हैं तो आप नहीं, कभी नहीं करेंगे ऐसे, है ना। ये सुगंधि श्री कृष्ण को अर्पित नहीं की गई है, उस समय भक्त अपनी इस सुगंध लेने की इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर देता है। तो पांच प्रकार की हवन सामग्री, पांच प्रकार की अग्नि में हवन करना। अब देखिए एक इसका उदाहरण, गांधारी देवी ने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ये एक हवन है, है ना। महाभारत के आदि पर्व के 109वें अध्याय में वर्णन आता है कि गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और माता पिता मेरा विवाह है उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसे उसी से जीवन भर के लिए अपनी आंखें बांध ली। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ भक्तगण अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जिस प्रकार गांधारी देवी ने अपने नेत्र इंद्रिय में रूप देखने की इच्छा का पतिव्रत रूपी अग्नि में हवन कर दिया। पतिव्रत उसने सुना ही था, है ना, उसने पति को नहीं देखा, पति को भी नहीं देखा, केवल सुना है, है ना। तो उसने जो है उस पहले से ही आंखों में पट्टी बांध दी। सोचिए विवाह के समय भी पति है अंधा है तो अपनी पत्नी को नहीं देख सकता, तो पत्नी ने भी पति को नहीं देखा, कितना बड़ा यज्ञ है ये हवन, है ना। अच्छा, वृंदावन के छह गोस्वामी इसके उदाहरण है, अत्यंत विरक्त थे, ये उदाहरण है, है ना। वृंदावन के छह गोस्वामी अत्यंत धनी परिवार में जन्मे थे, अपने समाज में बहुत सम्मानित पद पर नियुक्त थे, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने समस्त प्रकार के भोगों को त्याग कर वृंदावन में अत्यंत विरक्त जीवन अपनाया। अपने शरीर पर मात्र कौपीन और कंथा धारण करते थे, भोजन के लिए भी कुछ घरों से आटा मांग कर उसमें जल बनाकर बाटी तैयार करते थे, अग्नि में उसी को सेंक करके खाते थे, नमक भी नहीं, है ना। सनातन गोस्वामी का झगड़ा हो गया मदन मोहन जी से, मदन मोहन जी ने कहा तुम्हारी ये बाटी मेरे गले से नहीं उतरती, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। बोले अब तुम जो है नमक मांग रहे हो, अभी फिर तुम मांगोगे घी लाओ ये लाओ, मैं कहाँ से लाऊंगा, है तुम अपनी व्यवस्था खुद करो। तो यहाँ तक कि उसमें नमक भी नहीं मिलाते थे। सर्दी और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए श्री कृष्ण के तीव्र भजन में लगे रहते थे, उन्होंने निद्रा भोजन विहार सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ भक्तगण ऐसे भी होते हैं जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जिस प्रकार वृंदावन के छह गोस्वामी करते थे, है ना। ब्रह्मचारी का जीवन इसी प्रकार का होता है, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते ही हैं, है ना, कि ब्रह्मचारी शिष्य गण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। दिनांक 12 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, ब्रह्मचारी का जीवन यज्ञ के लिए होता है, पूरा जीवन ही उसका यज्ञ है, विशिष्ट रूप से भी अपनी इंद्रिय तृप्ति का हवन करते हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी गुरु के घर में रहते थे, ब्रह्मचारी गुरु को ले वसन दान तो गुरोर हितम, है ना, और उन्हें अत्यंत कठोर नियमों का पालन करना होता था। ब्रह्मचारी को गृहस्थों के घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी और ये भिक्षा गुरु के लिए होती थी, वो नहीं खा सकता, क्या समझे। ब्रह्मचारी गृहस्थों के घर में भिक्षा खाए मांगेगा अपने गुरु के लिए, तो ये एक प्रकार का यज्ञ है। उन्हें जो कुछ भी प्राप्त होता था उसमें से वे कुछ भी ना लेकर सब गुरु को अर्पित कर देते थे। फिर रसोई के पश्चात यदि गुरु शिष्य को बुलाकर भोजन दे तो शिष्य भोजन ग्रहण करेगा, यदि गुरु शिष्य को बुलाना भूल जाए तो शिष्य गुरु के पास जाकर ये ना कहे कि गुरुदेव मुझे आज भोजन नहीं प्राप्त हुआ है, मुझे भोजन दीजिए, बल्कि शिष्य उस दिन उपवास करें, इसे यज्ञ कहते हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन इस प्रकार के यज्ञ के लिए होता है, उन्हें अत्यंत कठोर अनुशासन में प्रशिक्षण प्राप्त होता था ताकि भविष्य में आशा हो कि वे आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। लेकिन यहाँ पर समझना है इस बात को कि प्राचीन काल में शरीर ऐसे नष्ट नहीं होता था, अगर नहीं खाया एक दिन दो दिन नहीं खाया तो शरीर नष्ट नहीं होता था, अभी तो शरीर तुरंत नष्ट होता है। इसलिए प्रभुपाद ने मतलब ये नहीं किया खाओ प्रसाद, ब्रह्मचारियों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की कि प्रसाद खाओ, है ना, कोई मतलब ये नहीं कि गुरुजी देंगे तभी खाएगा नहीं तो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है, है? आप जो है सवेरे मंगल आरती में उठिए और जो है जप करिए और क्लास में बैठिए, इसके बाद आइए प्रसाद भी लीजिए। हाँ ये बात जरूर है, अगर मंगल आरती में नहीं आए तो प्रसाद ना खाओ तो ये आपका जो है अपने आप में त्याग होगा आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि नो मंगल आरती नो प्रसादम, तो ये प्रभुपाद ने इस तरह का सुझाव दिया है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ भक्तगण अपनी इंद्रियों को इंद्रियों की भोग इच्छाओं का संयम रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन करते हैं जिस प्रकार ब्रह्मचारी जीवन में शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है। ठीक है, अब शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जीवन भर आम नहीं खाया, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए, अच्छा आधे लोगों को पता है। इस श्लोक का उदाहरण है, जीवन भर आम नहीं खाया, हवन कर दिया इस इच्छा का है। जिस समय शिल प्रभुपाद के गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मात्र 3 वर्ष के बालक थे, कितने 3 वर्ष के बालक, उस समय एक बार उन्होंने श्री कृष्ण को बिना भोग लगाया हुआ आम खा लिया। उनके पिता शिल भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें प्रेम से समझाया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पिता ने कुछ ऐसे नहीं कहा था कि तुमको इसका जो है दंड दिया जाएगा या तुम खुद इसका दंड दो, अपने आप को दंड दो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था, प्रेम समझाया कि आगे से नहीं करना, है ना, और गलती जो है बच्चे की वो गलती नहीं मानी जाती क्योंकि पहले तो गलती करता ही है तभी तो सिखाया जाता है, तो वो गलती नहीं मतलब समझा था उनके पिता ने, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती मान ली। ये कितना बड़ा गुण है, है? भक्त का कितना बड़ा गुण है कि पहली बार जो गलती होती है वो गलती नहीं मानी जाती, है ना, कोई नहीं मानता गलती, लेकिन इस बालक ने इसको गलती मान लिया, है ना। उस समय बालक ने अपने इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए ये व्रत ले लिया कि वह जीवन भर आम नहीं खाएगा। 3 साल की अवस्था में कोई बच्चे मानते ही नहीं है, खाने से मानते ही नहीं, उनको बार बार मना करो तो भी खाएंगे, लेकिन एक बालक जीवन भर, है ना। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ भक्तगण अपने इंद्रियों की भोग इच्छाओं का संयम रूपी अग्नि में उसी प्रकार हवन करते हैं जिस प्रकार शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जीवन भर आम खाने की इच्छा का प्रायश्चित रूपी अग्नि में हवन कर दिया। ये प्रायश्चित अग्नि है, इसमें हवन कर दिया, उस इच्छा का हवन कर दिया आम। अच्छा आप दूसरी पंक्ति क्या है, है? शब्द आदि नहीं विष्यान अन्न इंद्रिय अग्नि से जोहवती, है शब्द आदि, तो जैसे पहले स्रोत्र आदि इंद्रियानी था उसी पंक्ति में शब्द आदि विष्यान, तो कान से प्रारंभ करके 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, कान त्वचा नेत्र जिह्वा नासिका, उसी प्रकार शब्द से प्रारंभ हो गए 5 इंद्रिय विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो प्रथम पंक्ति में भगवान ने जिस क्रम में 5 ज्ञानेन्द्रियों की बात कही है उसी क्रम में 5 ज्ञानेन्द्रियों के 5 विषयों की बात कही है, है ना। तो अब दूसरा जो है जो यज्ञ है वो भगवान इसमें भी अन्य की बात कर रहे हैं, अन्य तो अन्य लोग ऐसे भी हैं जो वो नहीं करते तो ये वाला यज्ञ करते हैं, है ना, तो ये वाला यज्ञ करते हैं, है ना। तो इस लोग दूसरी पंक्ति में भगवान जिस यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं उसमें हवन सामग्री 5 विषय हैं और अग्नि है 5 ज्ञानेन्द्रियां। अब यहां पर हवन सामग्री क्या है? विषय। और अग्नि क्या है? ज्ञान इंद्रियां। इंद्रिय अग्निशु, पांच प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों रूपी अग्नि में पांच प्रकार के विषयों का हवन करते हैं, है ना। तो पांच प्रकार की जो अग्नियां हैं वो कौन सी? ज्ञानेन्द्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, है ना। और हवन सामग्री पांच प्रकार की, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। अब समझना है, भगवान विषयों को भोगने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि विषयों का हवन करने की बात कर रहे हैं। तो बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी बात है। विषयों को भोगने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि विषयों का हवन करने की बात कर रहे हैं। इस नाम पर जो है कोई विषयों को ना भोगे, लेकिन ग्रहण करना है विषयों को, लेकिन भोगना नहीं है, हवन करना है। गीता 3:40 में भगवान कहते हैं, हमारे कर्ण आदि ज्ञान इंद्रियों में काम शत्रु का निवास है। हमारे ज्ञान इंद्रियों में काम शत्रु का निवास है जो अग्नि के समान है, और इंद्रियों के जो शब्द आदि विषय हैं ईंधन या घी के समान है। तो अग्नि में जैसे जाते हैं ये ईंधन घी, तो और प्रज्वलित हो जाती अग्नि, आग, है ना। तो इंद्रियों में अग्नि है, तो इंद्रियों में जो अग्नि है तो वो अलग अग्नि है, और जो इंद्रियां अग्नि, इंद्रियों को अग्नि बनाना है वो एक अलग प्रकार की अग्नि है जिसमें विषयों का हवन करना है। आप समझ रहे हैं, इंद्रियों में काम अग्नि है, है ना। अगर इंद्रियों में काम अग्नि रहेगी और विषय आप भोगेंगे तो काम अग्नि और प्रज्वलित होगी, है ना। तो वो यज्ञ नहीं हुआ, ये तो भोग हो गया आपका, भोगने किया। लेकिन दूसरे प्रकार का जो यज्ञ भगवान बता रहे, वो इंद्रियों को ही अग्नि बनाना है, है? काम अग्नि जो है शांत करना है, काम अग्नि को नष्ट करना है, और इंद्रियों को ही अग्नि बनाना है, है ना। तो जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार कर्ण आदि इंद्रियों को जितना अधिक शब्द आदि विषय प्राप्त होते हैं उतना अधिक इंद्रियों में काम रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है। श्रीमद् भागवत में 9:19-14 में महाराज ययाति अपनी पत्नी देवयानी से कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि शांत नहीं होती है बल्कि और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषयों को भोगने से काम अग्नि शांत नहीं होती है और प्रज्वलित होती है। अब यहां पर प्रश्न उठता है, यदि इंद्रियों में विषयों को भोगने से काम अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है तो फिर इंद्रियों रूपी अग्नि में विषयों का हवन करने का अर्थ क्या है? कि विषयों का हवन करना हमें समझना चाहिए, जो भक्त रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं, आप समझ रहे हैं, जो भक्त रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं उनके इंद्रियों में काम अग्नि का निवास नहीं होता है, समझ रहे हैं। फिर रजोगुण समद्भवा, काम भगवान बताते हैं रजोगुण समद्भवा, तो रजोगुण ना हो, रजोगुण से ऊपर उठ जाते हैं उसकी इंद्रियों में काम अग्नि का निवास ना होकर विरक्ति रूपी अग्नि का निवास होता है, जो काम अग्नि को भी जलाती है, जो काम अग्नि को भी जलाती है। इस प्रकार उन भक्तों की इंद्रियां स्वयं एक प्रकार की अग्नि बन जाती हैं, है ना। और जिस समय भी इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करते हैं उस समय विषयों में जो काम अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति है वो ईंधन बन जाती है। तो यहां पर भगवान विषयों को ईंधन बता रहे हैं, परंतु हमें समझना चाहिए कि वास्तव में विषयों में जो काम अग्नि छिपी हुई है वो ईंधन है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की इंद्रियां ऐसी अग्नि है जो विषयों की काम अग्नि को भी जला देती हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा विषयों को इस प्रकार ग्रहण करता है कि उसकी इंद्रियों में काम अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, और इसी क्रिया को भगवान यहां पर यज्ञ कह रहे हैं। गीता 2:64-65 श्लोक में भगवान कहते हैं, जिस समय इंद्रियों में राग द्वेष नहीं रहता है उस समय व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करके प्रसन्नता की प्राप्ति करता है। राग द्वेष वियुक्त अस्तु विषयान इंद्रिय शरण, है ना। आत्मवश्य विधेयात्म प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता की प्राप्ति करता है, उस प्रसन्नता के द्वारा व्यक्ति के समस्त दुखों का विनाश हो जाता है और इस प्रकार उसके चित्त के प्रसन्न होने पर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसके पहले हमने चर्चा की थी जिसमें इंद्रियों में राग द्वेष अथवा काम अग्नि का निवास होता है उस समय इंद्रियों की तरह विषयों को भोगने पर काम अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो जाती है। फिर काम अग्नि के प्रज्वलित होने पर क्या होता है, गीता दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक में भगवान कहते हैं काम अग्नि के प्रज्वलित होने पर क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, समूह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, स्मरण शक्ति के भ्रमित होने पर व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति कर्म बंधन में फंस जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की राग द्वेष रहित इंद्रियां एक ऐसी अग्नि बन जाती हैं जो विषयों को ग्रहण करने पर विषयों में जो काम अग्नि है उसको ही जला देती है। इस प्रकार हम देखते हैं यहां पर एक अग्नि दूसरी अग्नि को जला रही है। अब सुनिए भागवत में एक ऐसा उदाहरण है। महाराज चित्रकेतु ने अनेक वर्षों तक स्त्रियों के साथ समय व्यतीत किया। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 2-3 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा चित्रकेतु भगवान शंकरषण देव की कृपा से विद्याधरों के राजा बन गए। उन्होंने लाखों वर्षों तक श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए विद्याधर लोक की स्त्रियों के साथ समय व्यतीत किया। इन श्लोकों में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहां पर ध्यान देने की बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे हुए थे किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जप करके उनका गुणगान करना नहीं भूले। कई स्थलों पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो व्यक्ति कलुषित नहीं है और जो व्यक्ति भगवान की यश का वर्णन करता है ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ भक्तगण अपनी इंद्रियों रूपी अग्नियों में विषयों का उसी प्रकार हवन करते हैं जिस प्रकार महाराज चित्रकेतु ने किया। इस प्रकार का यज्ञ गृहस्थों के लिए है। तो श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है ना, इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन और अन्य इंद्रिय तृप्ति कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से वे प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। ये संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्योंकि असंयम क्षमा करिए क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतम दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। अब देखिए एक ऐसी घटना जिसमें अर्जुन ने दोनों प्रकार के यज्ञ किए। अर्जुन ने दोनों प्रकार के यज्ञ किए। इस श्लोक की पहली पंक्ति में एक प्रकार के यज्ञ और दूसरी पंक्ति में दूसरे प्रकार के यज्ञ, दोनों प्रकार के यज्ञ किए अर्जुन ने। अब देखिए बड़ा आश्चर्य है, जैसे मैं अर्जुन स्वर्ग में इंद्र की सभा में उर्वशी का नृत्य देख रहे थे, सुन रहे सब लोग इंद्र जो है क्षमा करिए अर्जुन स्वर्ग में उर्वशी का नृत्य देख रहे थे उस समय उर्वशी के रूप को देखकर भी उनके अंदर काम अग्नि का संचार नहीं हुआ। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी नेत्र इंद्रिय रूपी अग्नि में उर्वशी के रूप का हवन कर दिया। दूसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति का यज्ञ यानी विषय ग्रहण किया लेकिन उनकी चेतना में वो विकार नहीं पैदा हुआ है ना, तो उर्वशी के रूप का हवन कर दिया यानी विषय को इंद्रिय की अग्नि में हवन कर दिया है ना। इसके पश्चात जिसमें उर्वशी रात्रि काल में अर्जुन के निकट सहवास के लिए आई उस समय अर्जुन ने उर्वशी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी त्वचा इंद्रिय में उर्वशी का स्पर्श करने की इच्छा का संयम रूपी अग्नि में हवन कर दिया है ना। तो दोनों प्रकार के यज्ञ हुए हैं ना। अच्छा अब इसका जो है एक दूसरा अर्थ भी निकल रहा है जो दूसरी पंक्ति है ना इंद्रिय अग्नि, इंद्रिय अग्नि तो ये कर तो हमने चर्चा की कि हमारी इंद्रियों की अग्नि। अब दूसरा अर्थ है कृष्ण की इंद्रिय रूपी अग्नि, ये भी जो है बहुत है, मतलब दिव्य अर्थ है। अभी तक हमने चर्चा की थी इंद्रिय अग्नि का अर्थ है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की राग द्वेष से रहित इंद्रियां ही अग्नि का कार्य करती हैं। हमारी इंद्रियां जिनमें राग द्वेष ना हो, है ना, जो विश्व में स्थित काम अग्नि को जला देती है। परंतु इंद्रिय अग्नि का दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रियां ही अग्नि का कार्य करती हैं और भक्तगण श्री कृष्ण की इंद्रिय रूपी अग्नि में ही शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं, कृष्ण को ही देते हैं विषय, है ना। दिनांक 15 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, यहाँ पर कहा गया शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निशु जुहेवती, तो यहाँ पर इंद्रिय अग्निशु का अर्थ है श्री कृष्ण की इंद्रियां। जिस समय हम श्री कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं उस समय हमारी इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि एक प्रकार का यज्ञ ये भी है कि हम शब्द आदि विषयों का श्री कृष्ण की इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं, है ना। हम लोग रोज गाते हैं ना वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, है ना, तो उसमें एक श्लोक ये भी है याया निभिर युक्तिरपेक्षणीया निकुंज योनो रति केली सिद्धि याया निभिर युक्तिर अपेक्षणीया तत्रातिदाक्ष्यात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं, है? कि निकुंजों में है? राधा कृष्ण की रति को सफल बनाने के लिए जितनी युक्तियाँ जो सखियाँ हैं वो करती हैं उनमें हमारे गुरुदेव बहुत दक्ष हैं, निपुण हैं, है ना। तो राधा कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, है ना, उनको विषयों, तो उनकी इंद्रियों की अग्नि में विषय हवन करना, है ना, तो ये जो है। गोपियाँ रास नृत्य में श्री कृष्ण की पाँचों इंद्रियों में पाँचों प्रकार के विषयों का हवन करती हैं। यद्यपि विभिन्न प्रकार के भक्तगण श्री कृष्ण के किसी एक इंद्रिय रूपी अग्नि में किसी एक विषय का ही हवन करते हैं। कुछ भक्त लोग हैं वो कृष्ण को भोगी लगाते रहते हैं तो एक प्रकार का यज्ञ करते हैं, है ना, तो कई प्रकार के भोग लगाते हैं कृष्ण को, तो एक इंद्रिय है कृष्ण की उसको जो है वो विषय देते हैं, है ना। लेकिन गोपियाँ पाँचों इंद्रियों को जो है कृष्ण की पाँचों इंद्रियों को विषय देते हैं। परंतु जिस समय श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं उस समय गोपियां श्री कृष्ण की पांचों इंद्रियों रूपी अग्नि में पांचों प्रकार के विषयों अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का हवन करती हैं, है ना। यानी कृष्ण को शब्द भी सुनाती हैं, है? सुंदर राग, है ना, मधुर गीत सुनाती हैं, स्पर्श भी देती हैं और रूप अपना श्रृंगार करती हैं, रूप का भी विषय देती हैं और रस, हाँ, रसना अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं कृष्ण के लिए और गंध सुगंधियाँ भी इस प्रकार। फिर शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य देव को भोजन से तृप्त किया, ये चैतन्य भागवत में एक घटना है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 25वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक दिन शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ने क्षमा करिए कि एक दिन शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी पर प्रभु ने कृपा करने के लिए उनसे भोजन मांगा। श्री चैतन्य देव बोले तुम्हारा अन्न खाने की मेरी बड़ी इच्छा है, है ना, तो चैतन्य देव की अग्नि है ये, है खाने की इच्छा, है ना, तो उनकी अग्नि है उसमें अब वो हवन करना है, है ना, तुम मुझे अन्न देने में कुछ भय मत करो, मैं ठीक कह रहा हूं। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी तो जो है मतलब भिक्षा मांग करके ही कुछ चावल इकट्ठे करते थे और उसी को ही खाते थे, इतने दरिद्र थे, हैं, और भगवान मांग रहे हैं भोजन तो उनको तो बहुत चिंता हो गई कि भगवान के लिए मैं क्या दूंगा, है ना। इस प्रकार महाप्रभु जब बारंबार कहने लगे तो शुक्लाम्बर ने बड़ी सावधानी से स्नान किया, फिर सुगंधित जल गर्म किया, उसमें चावल के साथ केला के नवीन मृदुल फूल मिलाकर पात्र को स्पर्श किए बिना अलग से डाल दिया, बर्तन भी नहीं छुआ कि अशुद्ध ना हो जाए मेरे छूने से, तो बर्तन को छुआ भी नहीं, ऊपर से डाला, प्रभु भी स्नान करके उपस्थित हुए। महाप्रभु बड़े आनंद से भोजन के लिए बैठ गए और भक्तों के सामने साक्षात भोजन ग्रहण करने लगे। उस समय प्रभु बोले, अपने जन्म से लेकर आज तक मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। भगवान ने है ना, तो ये तृप्ति मतलब भगवान को ही ना, तो ये हवन हो गया ना, है ना। इस भोजन का स्वाद तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बिना स्पर्श किए अलग से ही ऐसी स्वादिष्ट रसोई तुमने कैसे बना ली, तुमने छुआ भी नहीं, इतना स्वादिष्ट कैसे बनाया है तुमने। इस प्रकार प्रभु ने पुनः पुनः आस्वादन करते हुए बड़े आनंदित होकर भोजन किया। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्तगण श्री कृष्ण की इंद्रियों रूपी अग्नि में विषयों का हवन करते हैं, जिस प्रकार शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य देव की जिह्वा रूपी अग्नि में स्वादिष्ट भोजन का हवन किया। उनकी खाने की इच्छा है तो हवन किया, खिलाया अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन खिलाया, है ना। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में शीला प्रभुपाद लिखते हैं, बंगाली कविता प्रभुपाद ने प्रत्येक श्लोक की बनाई है। नैष्ठ के ब्रह्मचारी यज्ञ इंद्रिय संयम स्त्रोत्रादि मानस तप अग्नि ते अर्पण रूप रस शब्द स्पर्श विषय संयम यज्ञ होती से है इंद्रिय हवन। तो यहाँ पर शीला प्रभुपाद के शब्दों में श्री भगवान कह रहे हैं, रूप रस शब्द स्पर्श विषय संयम यज्ञ आहुति से है इंद्रिय हवन, अर्थात श्री कृष्ण की इंद्रियों रूपी अग्नि में रूप रस आदि विषयों का हवन करना एक महान यज्ञ है। गीता 5:29 में भगवान कहते हैं कि वे समस्त प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं, वे समस्त प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। इस बात को यदि दूसरे शब्द में कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण को सभी प्रकार के भोग प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है ना। सभी प्रकार के भोग जो उनकी इच्छा हो, है ना, उनकी इच्छा तो नहीं है कि अंडा मांस खिलाएं, है ना, तो ये नहीं सभी प्रकार के भोग, मतलब जो उनको पसंद हो, है कि नहीं, तो ये यज्ञ है, ठीक है ना। तो इतना जो है ये चर्चा हुई आज ये श्लोक पर। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है?
जगन्नाथ बल्लभ नाटक में जो भाग लेती थी युवतियाँ, उनका अपने हाथ से श्रृंगार करते थे और
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, रामानंद राय है ना। तो वो जो है मतलब जगन्नाथ जी की जो देवदासियाँ थीं, है ना, जगन्नाथ जी को के लिए जो है वो नृत्य करती थीं, गान करती थीं, तो जवान लड़कियां होती थीं और सुंदर लड़कियां होती थीं, अपने हाथ से उनके शरीर को स्पर्श करते थे और स्वच्छ करते थे रामानंद राय। तो पुरुष होते हुए भी उन स्त्रियों को स्पर्श करते थे, है ना। तो ये जो है कौन प्रकार का यज्ञ है? विषयों को इंद्रियों में हवन करना है, यहाँ पर स्पर्श विषय है उसको अपनी त्वचा रूपी इंद्रिय अग्नि में हवन किया उन्होंने, है ना। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई? हाँ जी, ये पुस्तक में अभी समय लग रहा है, अब देखो, वैसे मैंने काम पूरा कर लिया, लिखने का काम पूरा कर लिया, चौथा अध्याय का उत्तरार्ध है ये, तो अब देखते हैं फरवरी के महीने में आशा है कि हो जाए। हाँ जी, हाँ, तपो यज्ञ द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ यतिहा संतृप्ता। तो भगवान जो है यज्ञ के नाम पर भी ये सब विधियों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। और कोई? आपको नाम की व्याख्या सुननी, पूछ, आप कुछ कह रहे थे नाम की व्याख्या।
जो यहाँ पे जो दीक्षा ली है जिन भक्तों ने, तो कुछ भक्तों को नाम में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत लंबा नाम है या बहुत समझ में नहीं आ रहा मीनिंग। ये माता जी खासकर, माता जी आपका नाम क्या है? जरा धूम पर पर्ची दे, सबसे मुश्किल नाम बता रहे हैं कि इनका ही नाम है।
रचितांबरा स्वरूपा देवी दासी,
रचिता
रचित अम्बरा, राधा रानी जो है एक तो स्वरूपा है।